الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف کے اندر، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما تھے اور صدقہ یعنی خیرات پیسے ادا کرنا تھا، چیریٹی اور مانگنے کا یعنی صدقہ لینے کے حوالے سے خاص طور سے ذکر فرما رہے تھے ممبر پر، اور آپ نے خاص طور سے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلا، کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، ید العلیٰ ہی المنفقہ والسفلا ہی السائلہ، جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے وہ دینے والا ہوتا ہے اور جو نیچے والا ہاتھ ہے وہ لینے والا ہوتا ہے، مانگنے والا ہوتا ہے. ظاہر ہے بڑا آبویس سی حدیث ہے اور اس کے اندر سے میں بظاہر بس ایگزیکٹلی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ چیریٹی کرنا اور چیریٹی لینا اس حوالے سے یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے وصیت فرمائی کہ جس قدر ممکن ہو لینے سے یا مانگنے سے بچنا چاہیے انسان کو، اور جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. ظاہر ہے مین تو چیز شریعت کے اندر جو آبلیگیٹری ہے وہ زکوٰۃ ہے، تو اس سے وہی آف کورس سب سے پہلے مراد ہوگا کہ جو دینے والا ہے وہ ظاہر ہے بہتر ہوگا کہ وہ دے رہا ہے، اور جو لینے والا ہے مانگنے والا ہے اسے جس حد تک پاسبل ہو اس سے بچنا چاہیے، انلیس اینڈ انٹل وہ بالکل ہی کوئی اس کا مستحق ہے اور ضرورت مند ہے، اور انلیس وہ ایسا نہیں ہے اور بلا وجہ میں مانگ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر وہ جس سے مانگ رہا ہے اس سے بہتر نہیں ہے. تو مین چیز مستحق ہونا، جو مانگنے والا ہے وہ خود مستحق ہو، اور جو چیریٹی کرنے والا ہے وہ بھی یہ دیکھ کر کوشش کرے کہ صحیح جگہ اس کی ادائیگی ہو. زکوٰۃ کے حوالے سے خاص طور سے زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو جس کے لیے خاص شریعت نے متعین کر دیا کہ کسے دی جا سکتی ہے اور کسے نہیں. عام طور سے بھی جو چیریٹی کی جاتی ہے وہ بلا وجہ پیسے کسی کو بھی دے دینے سے تو ظاہر ہے اس کا حق ادا صحیح معنوں میں نہیں ہوگا، اصل حق تب ادا ہوگا جو صحیح ضرورت مند کو دی جائے. تو اس حوالے سے مین تو ہمیں ایک روایت ملتی ہے حضرت زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، ایک بہت ہی ڈیٹیل حدیث ہے جس میں یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں حاضر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو فتح اور رجل ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا آتینی من الصدقہ، کہ مجھے زکوٰۃ میں سے کچھ عطا فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے کو جواب دیا ان اللہ لم یرضا بحکم نبی ولا غیرہ فی الصدقات حتی حکم فجزاها ثمانیۃ اجزاء فإن كنت من تلك الاجزاء اعطیتک، کہ یہ جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے یہ ایسا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری یا کسی بندے کی بھی مرضی کے اوپر نہیں چھوڑ دیا کہ لم یرضا بحکم نبی ولا غیرہ، کسی بھی میری یا کسی دوسرے بندے کی مرضی سے اس میں شامل نہیں ہو سکتی کہ کسے زکوٰۃ دی جائے اور کسے نہ دی جائے، یہ تو اللہ نے بالکل متعین کر دیا ہے. فجزا ثمانیہ، بالکل آٹھ لوگوں کو کیٹیگوریکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو مستحقین زکوٰۃ ہیں. اور فَإِن كُنْتَ مِنْ تِلْكَ، اگر تم ان میں سے ہو ان آٹھ لوگوں میں سے تو پھر میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور اگر نہیں ہو تو ظاہر ہے میں کیسے دے سکتا ہوں. آف کورس یہی مطلب تھا اس بات کا، اشارہ سورہ توبہ کی آیت کی طرف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں کیٹیگوریکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آٹھ لوگوں کا بالکل دیر آر ایٹ پیپل جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں. اسی لیے آتا ہے سورہ توبہ کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ یہ آٹھ لوگ ہیں जिनके लिए अल्लाह ने ज़कात को ख़ास तौर से डिफ़ाइन कर दिया है कि ये वो मुस्तहकीन ज़कात हैं जिन्हें दी जा सकती है। सबसे पहले फरमाया फ़ुकरा को, यानी वो आम गरीब और मुफलिस लोग, अरबी ज़बान में फ़कीर कहते हैं जो गनी यानी कि मालदार के ऑपोज़िट होता है, उसकी ज़िद होती है, उसके अगेंस्ट जो चीज़ होती है पैसे वाले के, वो फ़कीर होता है जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब गुरबा आदमी है। तो ये कैटेगोरी की उसकी यानी वो फिर जो निसाब के पास भी उसकी मालियत ना हो, इतना फ़कीर हो वो। फिर दूसरा फरमाया मसाकीन को दी जा सकती है, मस्कीन मिस्कीन अरबी ज़बान में उस बंदे को कहते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो, बिल्कुल खाली हाथ हो, बिल्कुल ज़ीरो हो जो बंदा। और फिर आमलीन को दी जा सकती है, जो आमलीन वो लोग होते हैं जो तहसील व ज़कात वगैरह के जो वसूल करने के लिए जो लेबर मुतायन होती है, जो इस जॉब के ऊपर होती है, ज़ाहिर है वो कोई और काम नहीं कर रही होती, वो उसी में से जॉब करके लोगों से कलेक्ट कर रही होती है, उस जॉब के ऊपर जो ज़िम्मेदार होती है। फिर थर्ड कैटेगरी फरमाया मुअल्लफ़तिल क़ुलूब, यानी वो जो कुछ उस ज़माने में गैर मुस्लिम से जो इस्लाम लाना चाहते थे लेकिन अपनी गुरबत और कस्मा पुरसी की वजह से इनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो उनकी एक इसे मुअल्लफ़ कहते हैं तालीफ को, क़ल्ब यानी और दिल जोई के लिए उनकी अहम दीनी और यू नो मिली मसाले के लिए, अगर ये बिल्कुल क्योंकि ज़रूरी हो गया था तो उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया, उन्हें दी जा सकती थी। और फिर फरमाया रिकाब यानी ग़ुलाम और बांदियाँ जो ज़माने में होती थी, तो ये बहरहाल ये मुअल्लफ़तिल क़ुलूब हैं या ग़ुलाम हैं, ये ज़ाहिर है आजकल के ज़माने में तो एग्जिस्ट नहीं करता ये मामला, तो इन्हें नहीं दी जा सकती, लेकिन उस ज़माने में इन्हें भी दी जा सकती थी इनको आज़ाद कराने में, ग़ुलाम को के ज़िम्मे कोई कर्ज़ है उसे या उसके मालिक ने ख़ास मौक़ों पर होता था कहता था इतने पैसे दो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा, तो उसके मामले में भी ज़कात दी जा सकती थी। और फिर एक फरमाया गारमीन, यानी बज़ाहिर एक बंदा पैसे वाला है लेकिन उस पर कर्ज़ का बहुत ज़्यादा बोझ है, यानी अपनी माली हैसियत से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ पड़ गया है, दूसरे का माल देने में दूसरा जो माली तावान एट्सेट्रा एट्सेट्रा उसके ऊपर इतना ज़्यादा है कि यानी उसके जिसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो उसके एसेट्स को क्रॉस कर गई हैं, तो उसे दी जा सकती है ज़कात। और फिर फरमाया फ़ी सबीलिल्लाह, यानी वो लोग जो अल्लाह के दीन की नुसरत और हिफाजत और एलाए कलिमतुल्लाह के लिए निकले हुए हैं उनको दी जा सकती है। और फिर फाइनली इब्न सबील, यानी वो मुसाफिर जो टेक्निकली अपने घर से दूर है, बहुत बाहर है शहर से और वहाँ ज़रूरत पड़ गई उसे, उसके पास कुछ नहीं बचा है, तो वो कैसे करेगा? ज़ाहिर है उस ज़माने में तो ख़ास तौर से ये ट्रांसफ़र्स और क्रेडिट कार्ड्स और वेस्टर्न यूनियंस और एट्सेट्रा एट्सेट्रा के इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स भी नहीं होते थे, तो एक बंदा अपने मुल्क शहर से बाहर है, कोई उसके पास सूरत नहीं है, जानने वाला नहीं है, तो वो उसे भी ज़कात दी जा सकती थी। तो बहरहाल ये वो के लोग हैं जो ख़ास तौर से मुस्तहकीन ज़कात हैं, ऐसे किसी भी बंदे को ज़कात देने से खुदा ना खास्ता ऐसे ना हो कि वो अदा ही ना हो, तो ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि जिसे ज़कात दी जा रही है वो सही मायनों में मुस्तहक है, और अगर वो मुस्तहक नहीं है तो जैसे कि हदीस में आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमाया कि नहीं, तुम अगर मुस्तहक नहीं हो तो तुम्हें कैसे दी जा सकती है ज़कात, उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। और एक रिवायत में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की ये भी आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे एक्सप्लेन भी किया, लैसल मिस्कीन वल्लज़ी यतूफ़ु अलन्नासि तरुद्दु लक्मतु वलक्मतान वत्तमरतु वत्तमरतान वलाकिन्नल मिस्कीन अल्लज़ी ला यजिदु गनियन युग्नीहि वला युफ़्तनु बिही वयतसद्दक अलैहि वला यकूमु फयसअलुन्नास, के मिस्कीन वो आदमी नहीं होता जो ऐसे ही किसी से एक दो लुकमे या एक दो खजूरें वगैरह मांगे और लेकर चलता बने, बल्कि इन रियलिटी जो असल मिस्कीन है वो बंदा है जिसके पास अपनी ज़रूरत पूरी करने का सामान भी नहीं है, उसके पास बिल्कुल यू नो ही ज़ीरो, तो किसी को इसकी हाजत नंदी का एहसास भी नहीं होता कि वो सदके से उसकी मदद करे, और ना वो चल फिर कर लोगों से मांगता है, यू नो ऐसे सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो अपनी डिग्निटी को ऐसे ज़ाया ना हो नहीं होने देते, तो ऐसे लोगों को जो सही मायनों में ज़रूरतमंद हैं और हकदार हैं मुस्तहकीन हैं उन्हें ज़कात दी जा सकती है। और ज़ाहिर है इसीलिए एक दूसरी रिवायत में भी आता है अब्दुल्ला बिन आमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहल्लु सदकतु लिगनी वला ज़ी मिर्रतिन सवीयन, के ज़कात का माल जो है वह हराम नहीं है गनी आदमी के लिए और ना ही तवाना और तंदुरुस्त आदमी के लिए। यानी एक बंदा है वो पैसे वाला है, उसके पास उसको उसे ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई बंदा है जो बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना है, मेहनत मजदूरी करके कमा सकता है, तो ऐसे लोगों को ज़कात देना हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। उनसे इन्हें ज़कात देने से ज़कात बेहतर है कि कुछ सही मानों में हकदार आदमी तलाश करके दिया जाए। हज़रत उबैदुल्लाह बिन अदी बिन क़यार रज़ी अल्लाह अनु फरमाते हैं कि दो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए हज्जतुल विदा, ये हज्जतुल विदा के मौके पर, और उस टाइम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात का कुछ माल तकसीम फरमा रहे थे। तो उन दो आदमियों ने भी आपसे मांगा कि मुझे हमें भी कुछ इसमें से माल में से हिस्सा दें। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसे नज़र उठाकर ऊपर से नीचे तक, यू नो, जैसे कोई बंदा पूरा ऑब्जर्व करता है टॉप टू बॉटम, उन्हें देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज किया या एनालाइज़ किया कि ये तो बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना लोग हैं, इन्हें पता नहीं देनी भी चाहिए कि नहीं। और इसी वजह से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उनसे कहा, इन शिअतुम अतैतुकुमा वला हज़्ज़फ़िया लिग़नी वला लिकवी मुक्तसिबिन, कि अगर तुम चाहो तो ठीक है, मैं तुम्हें इसमें से माल में से दे देता हूँ, लेकिन ऐसे तंदुरुस्त तो तवाना लोग जो बिल्कुल मेहनत मजदूरी करके कमाने के काबिल हैं, उन लोगों का ज़कात के अंदर हिस्सा नहीं होता। यानी जो अपनी माश कमाने के काबिल हैं लोग, वो ज़कात के हकदार नहीं है, उन्हें ऐसे मांगना नहीं चाहिए। तो बहरहाल इससे ये पता चलता है, आजकल के ज़माने में हम देखते हैं एक प्रोफेशनल बैगर्स घूम रहे हैं, जो बिल्कुल जिनका एक पेशावर गदागर जिसे कहा जाता है, जिनका प्रोफेशन है ये मांगने का। तो बज़ाहिर ऐसे लोगों को ज़कात देने से पता नहीं अल्लाह के नज़दीक सही मानों में हक अदा हो भी कि ना हो, तो इसलिए बचना चाहिए ऐसे प्रोफेशनल्स को देने से, और सही हकदार को ढूंढ कर ज़कात अदा करनी चाहिए। फिर ज़कात के हवाले से एक चीज़ का ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है, उनके ऊपर भी ज़कात के वो भी मुस्तहिक नहीं होते। अब्दुल मुत्तलिब बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हाज़ी सदक़ात इन्नमा हिया औसाखुन नास व इन्नहा ला तुहिल्लु लि मुहम्मद वला लि आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये जो ज़कात का माल है, इन्नमा हिया औसाखुन नास, कि ये लोगों की माल व दौलत का मैल कुचैल है, डर्ट है, तो ये मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए हलाल नहीं है कि इस माल में से लिया जाए, ज़कात के माल में से। ज़ाहिर है ज़कात का माल होता ही इन इट सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए है, जैसे माल के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उस माल को पाक करने के लिए उसमें से ज़कात अदा की जा सकती है। जिस तरह से कोई कपड़े हैं डर्टी हैं, बिल्कुल गंदे हैं, उन्हें धोया जाता है तो उसमें से मैल कुचैल निकल जाती है। अब वो जो मैल कुचैल डर्ट है जो निकल गई, उससे बज़ाहिर वो कपड़ा पाक होता है, लेकिन वो मैल कुचैल एंड सेल्फ पाक नहीं होती, तो साफ़ नहीं होती। तो वो उससे ख़ानदान नबूवत को बचना चाहिए, ख़ास तौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए और क़्यामत तक के लिए अपने तमाम अहले ख़ानदान यानी बनू हाशिम के लिए ज़कात को नाजायज़ करार दे दिया। और यही बात अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की भी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कहीं से जा रहे थे, तो उन्होंने एक नीचे से खजूर मिली, तो आपने ख़ास तौर से फरमाया, लौला अन्नी अखाफ अन तकून मिन अस्सदक़ति लअकलतुहा, कि अगर मुझे ये डर ना होता, खौफ ना होता, ज़ाहिर है भूख की यकीनन उस वक्त शिद्दत होगी, तो आपने फरमाया कि इवन दो मैं इसे लेना चाहूँ भी, तो मुझे ये डर है कि कहीं ये ज़कात का माल ना हो, इसलिए मैं इसमें से नहीं ले सकता, मुझे डर है। यानी मशकूक और मुश्तबे चीज़ से बचना ख़ास तौर से यहाँ पे फरमाया, उससे परहेज़ और एहतियात का एक सबक दिया, जो कि अहले तकवा के लिए ख़ास तौर से, यू नो, इसके अंदर एक इबरत है या निशानी है या सबक है कि अगर ज़कात का डर ना होता तो आपने फरमाया मैं इसे खा लेता। और इसे इतना सीरियस लिए करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक मरतबा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अख़ज़ अल हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु तमरतम मिन तमर सदका, कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खजूर कई सदक़े के माल यानी ज़कात के माल में से उठाई और उसे अपने मुँह में रख लिया। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो फरमाया, कख कख लियत रहा, कि आपको यानी जैसे ओह ओह करते हैं या कैसे एकदम से एक्सप्रेशन दिया कि ताकि वो इसे अपने फौरन मुंह में से निकालें, और फिर उन्हें यानी अपने ग्रैंड सन हसन रज़ी अल्लाह अनु को इसकी नसीहत फरमाई कि अमा शाउरता ना ला नाकुल सदका, कि बेटा क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि लोग यानी बनु हाशिम के जो ख़ानदानी लोग हैं उनके वो ज़कात नहीं खाते, इनके ऊपर जायज़ नहीं है ज़कात माल लेना, यानी इतनी एहतियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे फरमाया करते थे। और बहरहाल बहुत सारी रिवायात में इसकी हमें तस्दीक भी मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी रिवायत में भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की आता है कि इज़ा उतिया बितआमिन सअलानु आदियतुन अम सदका, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी माल आता था तो आप पहले पूछते थे क्या ये हदिया है या सदका है। फ़ैन क़ीला सदका क़ाला लिसाहिबी कुलू वलम याकुल, कि अगर कोई देने वाला कहता कि ये सदका यानी ज़कात का माल है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से कुछ भी नहीं इस्तेमाल फरमाते थे और सहाबा को बांट देते थे कि तुम लोग इसे यूज़ यूटिलाइज़ कर लो और खा लो। और अगर कहा जाता है इन हदिया कि ये हदिया है यानी गिफ्ट है तो सौरा भवी हदीफ़ा का लमा हूँ, तो फिर आप उसमें से यू नो यूटिलाइज़ कर लेते या ले लेते। तो इसमें डिफरेंस ये है, सदका या ज़कात जो वर्ड्स यहाँ पे हदीस में इस्तेमाल होते हैं ये वो माल है जो किसी को किसी गरीब या ज़रूरतमंद समझ कर किसी को यू नो एआनत या इमदाद के तौर पर सवाब की नीयत से देना, चैरिटी करना, ये शरीयत की इस्तेलाह में सदका कहलाता है। और इवन दो अब ये फ़र्ज़ हो या वाजिब हो, चाहे ज़कात हो या नॉन ज़कात की कैटेगरी में ही कोई सदका हो तो ये वाजिब ना भी हो, लेकिन वो सदका भी जैसे मिसाल के तौर पे ज़कात है, ईद फितर का माल है, ये वो फ़र्ज़ और वाजिब अदायगियाँ हैं। और फिर नफली हो जैसे किसी की इमदाद करना, खैरात करना, चैरिटी करना, तो ये वो तमाम सदकात हैं जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर से बचा करते थे। और अगर किसी को मिसाल के तौर पे कोई अकीदत या मोहब्बत के ताल्लुक़ की वजह से कुछ देता है गिफ्ट तो उसे हदिया कहा जाता है। तो अगर वो कैटेगोरिकली क्लेरिफाई करने के बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से यूज़ किया करते थे। और यही बात एक सही बुखारी में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत में भी है, काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकबुलुल हदिया तो युसीब अलैहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल किया करते थे और उसमें से इस्तेमाल फरमाया करते थे। और बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान तो क्या एक मरतबा जो आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम थे अबू राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु, वो रिवायत एक बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मखज़ूम रज़ी अल्लाह अन्हु को एक कबीला बनू मखज़ूम के एक आदमी को ज़कात वसूल करने के लिए मुकर्रर फरमाया था। तो उस मखज़ूमी ने अबू राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें भी इसमें से ज़ाहिर है क्योंकि जो आमिलीन होते हैं वो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, तो उसमें से कुछ अपने लिए उन्हें भी मिल जाएगा बाद में। तो उन्होंने कहा नहीं, अबू राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा नहीं, ज़ाहिर है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। उन्होंने फ़ौरन कहा नहीं, मैं पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछूंगा इस बारे में, फिर डिसाइड करूंगा मुझे लेना चाहिए नहीं। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तशरीफ़ ले गए और अर्ज़ किया कि ये मामला है, क्या मैं ये माल में से इस्तेमाल कर सकता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना सदक़त ला तहिल्लु लना व इन्ना मवाली अल-क़ौम मिन अन्फुसिहिम, कि नहीं, ख़ानदान नबूवत जो है हमारे घराने के ग़ुलाम भी यू नो हमारी तरह से ही, उनके लिए भी जायज़ नहीं है कि वो ज़कात में से कोई माल इस्तेमाल करें या यूज़ करें या लें। तो बहरहाल ये ग़ुलामों का वो स्टेटस था, एक मकाम था जो बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो भी आले नबूवत की तरह ज़कात के माल में से इस्तेमाल ना करें। इवन दो दूसरे आमिलीन को दिया जा सकता है माल, लेकिन अगर आले नबूवत हैं तो वो के उसके ग़ुलाम हैं तो उन्हें भी ज़कात का माल लेने से परहेज़ करना चाहिए। और ज़ाहिर उस ज़माने में इन ग़ुलामों की क्या हैसियत होती थी, लेकिन ये वो मकाम था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया अपने ग़ुलाम को कि उसे उन आले नबूवत की कैटेगरी में खड़ा करके ये मसला बयान फरमाया। तो एक चीज़ जो समझने की कि अब कौन जो सही मानों में मुस्तहिक है, वो कब तक किस वजह से ले सकता है या नहीं ले सकता, या कब उसके लिए जायज़ होगा माल लेना, कब नाजायज़ होगा लेना, या किसे दिया जा सकता है किसे नहीं दिया जा सकता, इसमें कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो حضرت عبیشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلۃ لا تحل لغنی ولا لذی مرۃ سوا الا لذی فقر متقن او غرم مفزق ومن سأل الناس لیشری بھی مالو کان خموشا فی وجہ یوم القیامہ ورزفا یاکلو من جہنم فمن شاء فلیقل ومن شاء فلیکثر، کہ مال جائز نہیں ہے زکوٰۃ کا مال لینا، اس کا سوال کرنا کسی امیر آدمی کے لیے جائز نہیں ہے جو مالی طور پر اپنا خود کفیل ہو یا تندرست و توانا، اس کے لیے مال کا سوال کرنا جائز نہیں ہے، یہ صرف ایسے آدمی کو دیا جا سکتا ہے جو بالکل کوئی نادار مفلس آدمی ہے، جو اس کی غریبی نے اسے زمین پر گرا دیا، یا اس کے اوپر اتنا قرض ہے، تاوان ہے، اس کا بوجھ ہے کہ وہ ادا ہی نہیں کر پا رہا، تو اس ایسے کسی آدمی کو ڈھونڈ کر اسے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اور اگر کوئی آدمی ایسے ہی اتنا ضرورت مند نہیں ہے اور وہ مانگنے کی اس کی عادت ہے، پروفیشنل بیگر ہے تو وہ مال لیتا ہے تو وہ گویا اس کے قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر ایک زخم اور گھاؤ کی شکل میں نمایاں ہوگا ایسا مال جو وہ زکوٰۃ کے عوض لے گا، اور جہنم کا گرم جلتا ہوا پتھر ہوگا جس کو وہ وہاں کھائے گا. اب وہ اگر پھر بھی چاہتا ہے تو وہ یہ مال سوال کر کر کے لوگوں سے مانگ مانگ کے اسے بڑھاتا جائے یا کم کرتا جائے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن بہرحال ایسے بلا وجہ مانگنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا. تو زکوٰۃ کا مال مانگنا اسی وقت صرف جائز ہوتا ہے جب ایکسٹریم کوئی سچویشن ایسی ہے کہ مانگنے پہ بندہ مجبور ہے. بلا وجہ پروفیشنل بیگنگ کرنا یہ بالکل ایک اچھا عمل نہیں ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل پسند نہیں فرمایا. اور ایک دوسری روایت میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آتا ہے کہ من سأل الناس اموالہم تکثروا فإنما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر، جو کوئی بھی مال اپنا مال بڑھانے کے لیے کہ میرے پاس اور مال ہو جائے، جمع ہو جائے، اور پھر اس وجہ سے دوسروں سے مانگتا پھرتا ہے تو وہ بس جہنم کا انگارہ مانگتا ہے گویا، ہی از جسٹ آسکنگ فار فائر آف ہیل فائر فار ہمسیلف. اب وہ چاہے اسے فلیستقل او لیستکثر، وہ چاہے اسے کم کرے مانگنا کم کر کے، اور یا چاہے تو بڑھاتا جائے، اس کی اپنی مرضی ہے. اسی طرح کے الفاظ ایک دوسری روایت میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آتے ہیں کہ جو بندہ من سأل الناس ولو ما یغنی جا یوم القیامت مسألته فی وجہی خموش او خدوش او قدوح، کہ یہ جو بھی غنی آدمی مانگتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے پہ ایک داغ ہوگا زخم کی صورت میں ایک بڑے سے. تو عرض کیا یا رسول اللہ، کو یہ ما یغنی، یہ غنی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی صحابہ ظاہر ہے ڈر گئے کہ اتنا سخت وعید ہے کہ کون بندہ مانگ سکتا ہے کون نہیں، اور اگر بلا وجہ مانگنا اتنا غلط ہے تو پھر اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ کون غنی کی کیٹیگری میں آئے گا جو مال نہیں مانگ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 درہم او قیمتہا من الذہب، کہ جس بندے کے پاس بھی 50 درہمز کی قیمت کے مطابق سونا ہے یا وہ 50 درہمز ہیں یا اس کی ایکویلنٹ نیٹ ورتھ موجود ہے تو وہ بندہ غنی کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. بہرحال ڈفرینٹ احادیث میں ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہمیں غنی کی ملتی ہیں. ایک روایت میں سننے ابو داؤد جو سہل بن حنزلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں جب پوچھا گیا مل غنی تو الذی لا تنبغی معاہ المصلہ، کہ غنی وہ کی مقدار کے بارے میں پوچھا کیا جسے سوال نہیں کرنا چاہیے کسی دوسرے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قدر ما یغدیہ و یعشیہ، کہ جس بندے کے پاس دن کا کھانا کھا سکے اور رات کا کھانا کھا سکے، اتنا مال ہے دو وقت کی روٹی کے لیے، تو وہ غنی کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، اسے نہیں مانگنا چاہیے. بہرحال علماء نے اس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز تمام احادیث کو جمع کر کے جو متعین فرمائی ہیں وہ یہی ہے کہ صاحب یہ مستحق ہونے کے لیے زکوٰۃ کا ایٹ لیسٹ 52.5 تولہ چاندی سلور کی نیٹ ورتھ ہونی چاہیے کسی انسان کی، یا ساڑھے جس کی بھی ساڑھے آج کل کے زمانے میں نیٹ ورتھ 52.5 تولہ سلور کے برابر ہے تو وہ مستحق بن جاتا ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو وہ مستحق نہیں ہوتا. یہ علماء نے اس کی ڈیفینیشن ظاہر ہے کیٹیگوریکلی بتا دی. تو بہرحال مانگنے کا جو معاملہ ہے اس سے سخت بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ایکسٹریم حد تک کہ جتنا ہو سکے اس سے بچا جائے. اسی لیے انیشلی ہم نے جو روایت اسٹڈی کی تھی الید العلیا خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ جو ہوگا وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوگا، دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے، یہی بظاہر سمجھ آتا ہے. और अगर बहुत ही कोई एक्सट्रीम सिचुएशन है, किसी को मांगना पड़ भी जाता है, तो एक रिवायत में आता है इब्ने फरासी रज़ी अल्लाह अन्हु की कि उन्होंने उनके वालिद फरासी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब अर्ज़ किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं किससे मांगा करूं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर जवाब दिया था, इन कुन तलाबुद्दा फसलिल सालिहीन, अगर मांगना बिल्कुल ही नागजीर है, इट इज़ इनएविटेबल और बहुत ज़रूरतमंद हो और मांगना ही पड़ जाए, तो फिर किसी सवाले यानी नेक बंदे से मांगो, बिल्कुल ही अगर मजबूर हो ही जाओ तो अल्लाह के नेक बंदों से सवाल किया करो, ऐसे हर किसी से सवाल करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे बेहतर तो यही होता है कि इंसान अपनी हाजत को अल्लाह के सामने रखे बजाय बंदों के सामने रखने के। यही बात इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में भी आती है कि वो फरमाते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन असाबत फ़ाक़त फ़नज़ला बिन्नास लम तुसद फ़ाक़त वमन अनज़ला बिल्लाहि औ शक्का अल्लाहु लहू बिलग़िना इम्मा बिमौतिन आजिलन औ ग़िनन आजिलन, कि कोई बंदा जो लोगों से मांगता फिरता है तो उसकी वो मजबूरी, उसकी वो ज़रूरत कभी भी इटर्नली दूर नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, मुस्तकिल निजात नहीं मिल सकती उस बंदे को। हाँ, अगर वो अल्लाह से मांगता है सही नीयत से, इखलास से, तो अल्लाह चाहे उसे उससे फिर गना अता फरमा देता है, उसे निजात अता फरमा देता है मौत के ज़रिए से, या उसका वो कर्ज़ा दूर अदा कर देने के, या उसकी जो भी ज़रूरतमंद है, उस हाजत है, उसे ख़त्म कर फरमा कर। तो मांगना सिर्फ अल्लाह से ही बेहतर होता है, लोगों से मांगना किसी सूरत भी अच्छा एक अमल नहीं समझा जाता। और जो बंदा बंदों से सवाल नहीं करता अपनी ज़रूरत होते हुए भी, उसके लिए ज़ाहिर है फिर बहुत अल्टीमेट आला मकाम भी हमें मिलता है। बहुत सारी रिवायात में हज़रत सुबान बिन रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यक फलो ला यसअलुन्नास शैयन फतकफ्फलो लहु बिलजन्ना फ़क़ाल सुबान अना फ़कान ला यसअलु अहदन शैया, कि जो कोई भी मुझे गारंटी देता है कि लोगों से कुछ नहीं मांगेगा, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। ज़ाहिर है इस पे सुबहान रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ही इसका असर उन्होंने लिया, और उन्होंने फरमाते हैं कि उनका ये दस्तूर था कि वो किसी आदमी से कभी भी कुछ नहीं मांगते थे, जो भी ज़रूरत होती थी कभी किसी शख्स से, किसी दूसरे इंसान से नहीं मांगते थे, क्योंकि ज़ाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फ़तकफ़लो लहू बिलजन्ना, मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ उस आदमी को जो दूसरों से मांगे ना। और अगर किसी को बिलफर्ज़ बग़ैर सवाल और बग़ैर किसी तमाय नफ्स के कुछ मिल भी जाए तो उसे ले लेना चाहिए, यानी विदाउट आस्किंग कोई अगर नेमत किसी वजह से मिलती है उसे ले लेना चाहिए, उसमें कोई ऐसी हर्ज की बात भी नहीं है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जैसे माल में से कुछ अपना कोई एम्पल माल हो गया तो उसमें से दिया करते थे, मैं उनसे अर्ज़ करता, आतीफ़ अफ़कर आई, कि आप मुझसे ज़्यादा कोई ज़रूरतमंद है उसे दे दीजिए मुझे मेरे बजाय। तो मुझे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुज़ू फ़तमल्लू वतसद्दक़ बिहि जाका मिन हाज़ल माल, के ये माल अपने पास रख लो और किसी ज़रूरतमंद को तुम खुद सदका कर देना। अंत गैर मुशरफ़ें वला साइलें फ़ुज़ू व मालन फ़ला तुतबिउल नफ़्सक, के तुम्हारे लिए जब कोई माल तुम्हें इस तरह से मिले कि तुमने इसकी सवाल नहीं किया, यू डिडंट आस्क फॉर इट, बट तुम्हें ऐसे ही अल्लाह की तरफ से कुछ मिल रहा है तो तुम ले लो, क्योंकि तुमने इसका सवाल तो नहीं किया था, तुम्हारे दिल में इसकी चाहत और तमा नहीं है, तो फिर तुम ले लो और किसी और को आगे सदका कर दो, तुम्हें अल्लाह इसका सदक़े का अजर और बदला और जज़ा अता फ़रमाएंगे। और फिर जहाँ तक भी हो सके बहरहाल आदमी को खुद ही कोशिश करनी चाहिए, मेहनत मजदूरी करके अपना माल कमाए अपना खाए, दूसरों से मांगना किसी सूरत भी एक अच्छा अमल नहीं समझा जाएगा। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, या खुज़ा अहदकुम हबलहु फयाती बिहुज़मत हतबिन अला ज़हरी फयबीअहा वयकफ़ुल्लाहु बिहा वजहहु ख़ैरुल्लहु मिन अन यसअला अन्नास अतूहु औ मनअूहु, कि ये बेहतर है किसी आदमी के लिए कोई कोढ़ाला लेकर लकड़ियाँ काट कर जंगल से और वो बेचे और अपना माल अपनी ज़रूरतें पूरी करे, इस बात से वो ये बेहतर है कि वो किसी से मांगे, और फिर ज़ाहिर है मांगेगा तो यस लोगों की मर्ज़ी है, होगी तो देंगे और वो मना भी कर सकते हैं, तो एक बेइज्जती की भी इसमें पहलू ज़ाहिर है शामिल है। यही बात एक अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में भी हमें मिलती है कि एक अंसारी सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, और बिल्कुल यानी गरीब सहाबी थे, उन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे कुछ माल में से अता फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा आपके पास कुछ है, उन्होंने कहा मेरे पास टोटल एक कंबल है जो हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं या नीचे बिठा कर उस पर बैठते हैं, या घर में एक कप है बोल है यानी एक प्याला है जिसमें हम कुछ खानी पी पानी वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे पास ये लेकर आओ दोनों चीज़ें। वो लेकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उठाया और ऊपर दिखाकर जैसे उसकी बोली लगवाई कि कौन है जो मुझसे ये ख़रीदेगा। एक सहाबी ने कहा मैं आपसे एक दिरहम में ये चीज़ ख़रीदता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अर्ज़ किया, फिर फरमाया कौन है जो मुझे इससे एक दिरहम से ज़्यादा देगा। एक सहाबी ने दो दिरहम में वो चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफ़र किया, आपने उन्हें उससे बेची, वो दो दिरहम उस बंदे को दिए सहाबी को और बोला जाओ जाकर एक कुल्हाड़ा लेकर आओ, एक एक्स लेकर आओ। वो जाके ख़रीद कर लाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर एक लकड़ी का जो दस्ता होता है वो लगाया और मज़बूत लगाकर और दिया, बोला जाओ जाकर जंगल से कुल्हाड़ा लेकर लकड़ियाँ काटो और इससे करो अपना पेशा बनाओ और लकड़ियाँ ला कर बेचो उन साहब, और मुझे दो हफ्ते तक नज़र नहीं आना। दो हफ्ते बाद जब वो आया आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो उनके पास 10 दिरहम थे। वो जाते लकड़ियाँ बेचते, उन्हें शहर में ला कर बेचते, अपनी ज़रूरत पूरी करते। गोया इस तरह से उनका एक सॉर्ट ऑफ बिज़नेस चल पड़ा और वो अल्लाह के हुक्म से अपनी कसमा पुरसी से दूर हो गए। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया हाज़ा खैरुल्लक, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, अंता जी अलमसला, कि मांगने से तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि जो मांगने वाला ज़ाहिर है नुक्ता तनफी वजह का यम, उसके चेहरे पर एक वो निशान जिसकी बात बार बार आती है क़यामत के दिन, एक ज़ख़म होगा। और मांगने के लिए सिर्फ यही है कि बहुत ही ज़रूरतमंद हो, अवलिजी गुरमिन अव मुक्तन अवलिजी दमिन मुजैन, जो बहुत ही कोई मजबूर है बेबस है तो वो मांगे, या किसी के ऊपर कर्ज़ा है, या कोई जिसे खून बहा की रकम कहा जाता है वो उससे अदा करने के लिए कोई बंदा मजबूर है देनी है तो उस सूरत में मांगे वरना नहीं दे। ज़ाहिर ये बातें बज़ाहिर तो अदीस में हम देखते हैं, लेकिन अगर हम आजकल के ज़माने में एनालिसिस करते हैं तो इस उम्मत में पेशावर साहिलों और गदागरों का एक बहुत तवील बड़ा तबका मौजूद है जो प्रोफेशनल बेगर्स हैं, जो बात बात पे मांगने पे लगे हुए होते हैं, इवन दो कोई ज़रूरतमंद भी नहीं होगा उनमें से, लेकिन इनमें भी वर्स्ट वो हैं जो कुछ लोग तो जो मांगने में भी जो आलिम या पीर या कोई बहुत ही मुअज़्ज़ज़ किस्म का अपने आप को बड़ा मौलवी और पीर कहते हैं, लेकिन वो इस सॉर्ट ऑफ गदागरी करते हैं। ये लोग सवाल और गदागरी के अलावा फरेब भी और दीन फरोशी के भी मुजरिम हैं, जो लोगों को इस तरह से दीन के नाम पर मांगने में और लगे हुए हैं और दीन का भी नाम ख़राब करने पर लगे हुए हैं। और फिर फाइनली बहरहाल देने में जब माल देता है तो इंसान को अपनी कोशिश के मुताबिक ये नहीं देखना चाहिए सिर्फ ज़कात ही दे रहा हूँ, ज़कात के अलावा भी माल में से जो हिस्सा है उसमें भी इंसान का के ऊपर ये लाजिम है कि वो अदा करे। सिर्फ इतना ही नहीं कि मैंने बस ज़कात अदा कर दी 2.5% तो बस मेरा जो है वो ऑब्लिगेशन अदा हो गई। ज़ाहिर ऑब्लिगेशन तो अदा हो गई, लेकिन असल अजर तब होगा जब वो उससे बढ़कर अदा करे। हज़रत फ़ातिमा बिनत कैस रज़ी अल्लाह अन्हा एक रिवायत बयान करती हैं जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल माल लहक्कन सिवा ज़कात सुम्मा तआला लैसल बिर्रान तुवल्लु वुजूहकुम वाली आयत, के सूरह बकरा के अंदर आता है लैसल बिर्रान तुवल्लु वुजूहकुम किबलल मशरिकी वल मगरिबी वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबियीन وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة। سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر کے بس نماز وغیرہ یا ایمان ہی صرف لے آئے، بلکہ نیکی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے مال میں سے علی حبی مال کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے یا مال کی محبت کم کرنے کی وجہ سے اس مال میں سے اپنے ذل قربہ کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور ابن سبیل اور مانگنے والوں کو یعنی ضرورت مندوں کو دے، چیریٹی کرے۔ اور یہاں پہ بھی پھر آگے اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے بالکل کیٹیگوریکلی کہ صلاۃ اور زکاۃ دو الگ عمل ہیں، اور مال کو ادا کرنا دینا یہ بالکل ایک عمل الگ عمل ہے، یہ زکاۃ سے بڑھ کر دینا میں ہی اصل نیکی کا معاملہ آئے گا انسان کے ساتھ۔ اسی لیے فورتھ پارے کی فرسٹ آیت یہی کہتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اس ہائیسٹ لیول پر تو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس میں سے نہیں دو جو تمہیں عزیز ہے۔ تو صحیح نیکی کا مطلب معیار وہ ہوگا جو زکوٰۃ سے بڑھ کر دینا ہوگا۔ انسان کو اس میں کنجوسی یا بخل سے مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، چیریٹی کرنے میں، ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں جس حد تک ہو سکے تو کوشش کرنی چاہیے۔ اور کس طرح سے دینی چاہیے، کبھی کوئی مال کسی کی कन्फ्यूजन होता है, यार मेरे पास तो माल नहीं है, मैं कैसे दूँ। तो अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु एक रिवायत बयान करते हैं जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्ली मुस्लिमिन सदाकतुन, कि हर मुसलमान पर चैरिटी करना फ़र्ज़ है, लाजिम है। जिस सहाबा ने अर्ज़ किया कि भाई अगर फ़ाइन लम जजद, कि अगर किसी के पास माल ही नहीं है तो वो चैरिटी कैसे करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़लयअमल बियदी यदई वयनफ़ाउ नफ़सहु, कि वो लोगों के कोई काम कर दे अपने हाथों से, लोगों की कोई फ़िज़िकल काम है वो कर दे, इस फॉर्म में चैरिटी कर दे। अगर पैसे नहीं हैं तो किसी की हेल्प करके, तो फ़िज़िकल हेल्प करके उसका काम वाम निपटा के उसके लिए हेल्प आउट कर दे, ये भी सदका में आ जाएगा। कि साहबा ने अर्ज़ किया, अगर किसी कोई हेल्प आउट भी नहीं कर सकता, इतनी भी उसके अंदर इस्तेआत नहीं है, तो आपने फरमाया फ़या अमर बिल खैर, फिर नेकी का हुक्म करे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाए, नेकियों की तरफ तलकीन करे, दावत के काम में लगे, ये भी सदके में आता है। साहबा ने फिर अर्ज़ किया, फ़ैन लम यफ़अल, अगर वो इतना भी नहीं कर सकता तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़यूम से को अनशर्री फ़ैन्नहु लहू सदक़ा, तो वो एटलीस्ट इतना करे कि अपने आप को बुराई से रोके, गुनाहों से अपने आप को बचाए। यानी हर मुसलमान, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, ताकतवर हो, तवाना हो, ज़ईफ़ हो, कमज़ोर हो या बिल्कुल हेल्दी हो, हर बंदे के ऊपर लाजिम है सदका करना, चैरिटी करना, खैरात करना। और कोई अगर माल वाला नहीं भी है तो फिर कम से कम वो दूसरों की फ़िज़िकल फॉर्म में कोई हेल्प आउट कर दे, कोई काम वगैरह उनके कर दे, ये इस सदक़े की कैटेगरी में आ जाएगा। ये भी नहीं कर सकता तो लोगों को नेकियों की तरफ तरगीब दे, उनके कोई नेकियाँ करे या और दूसरे अमाल करे अच्छे। और ये भी नहीं कर सकता तो फिर एटलीस्ट अपने आप को गुनाहों से रोके, बुराई से रोके, क्योंकि ये भी सदक़े की कैटेगरी में आता है। कम से कम इतना तो हर मुसलमान पर लाजिम है। तो अल्लाह सुबहाना व ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सदका, खैरात और चैरिटीज़ करने की तौफीक अता फरमाए, और हर फॉर्म में किसी भी तरह से मांगने वालों में, साइलिन के में बनने से बचाए और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।